भगवान के अनुराग में प्रेम में जो रंगे हुए हैं उनको साधारण लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन स्थिति में कहां है। कभी जोर से हंसते हैं, इसलिए हंसते हैं कृष्ण की लीलाओं को कुछ देख करके हंसते हैं। जैसे कौन सी लीला, जैसे एक बार मधुमंगल ने कहा कृष्ण से, यदि तुम अपनी बंसी दे दो, मोर मुकुट दे दो, पीताम्बर दे दो, तो कोई भी गोपियां तुम्हें नहीं पूछेंगी, सब हमको आदर करेंगी और लड्डू देंगी। कृष्ण की अच्छी बात है, कृष्ण ने अपना पीताम्बर दे दिया, बंसी भी दे दी, मोर मुकुट भी उनको पहना दिया, बिल्कुल कृष्ण जैसे सज गए। इतने में केशी दैत्य विराट घोड़े का हाथ रूप धारण कर हिन हिन आता हुआ आया और देखा जैसे यही तो कृष्ण है। कंस ने बतलाया जिसके मोर सिर पर मुकुट हो, बंसी हो, पीताम्बर हो, उसी को कृष्ण समझ लेना। बस एकदम निकट आकर के जोर से दो लत्ती झाड़ी, किंतु उनको लगी नहीं, हवे में उड़ गए। देख करके अब वो देख रहा है कौन, अनुराग में भरा हुआ चित्त समाधि अवस्था में देख रहा है, और वो हंसने लगा। कभी कृष्ण के विरह में रोने लगता है, कभी पछाड़ खाने लगता है, कभी एकदम चुप हो जाता है। तरह तरह की स्थितियां हैं जो जगत के लोग नहीं समझते। ये अनुराग या प्रेम की स्थिति है, समाधि की अवस्था बहुत उच्च स्थिति, इसका उन्होंने पद में गाया। असल में ये प्रेम ढाई अक्षर का, गॉड इज लव, लव इज गॉड, कृष्ण का स्वरूप ही प्रेम है। मैं तो समझता हूं कि दो अंगुल बड़ी राधा जी हैं, राधा जी का स्वरूप और कृष्ण प्रेममय है। जितना उनके हृदय में प्रेम मदनक भाव तक है कृष्ण, उसी के लोभ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए राधा जी का ही स्वरूप प्रेममय है, प्रेम की गुरु हैं। कृष्ण अपने मुख से स्वीकार करते हैं प्रेम की मैं गुरु हूं, राधिका जी प्रेम की, मैं जगत का गुरु हूं और मेरी प्रेम की गुरु राधा जी है। इस तरह से ये प्रेम की महिमा है। हमारा उद्देश्य क्या है, प्रेम ही उद्देश्य है, किंतु कौन सा प्रेम। कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है रसामित सिंधु है वो नहीं, राधा जी के हृदय में सेवामय जो वासना युक्त जो प्रेम है उसकी आवश्यकता। अभी आप वंदना कीजिए। यो यस
Thank you. वेदांत तीर्थ महाराज जी कुछ हरि कथा प्रवेशन करेंगे। बड़ा वाला तो ये ले ले बड़ा खड़े हो गए।
प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए जो कि स्वयं राधिका भाव रस माधुरी आस्वादन सुखकार जयति कृष्ण चैतन्य जय कली प्रकट ब्रजराज ब्रजराज श्री कृष्ण जो कि इस कलियुग में प्रकटित हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में गौर हरे के रूप में भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुखकार राधा जी के भाव माधुरी का आस्वादन करने के। अभी देखिए वर्तमान में सर्वत्र देखा जा रहा है देवी पूजा हो रही है, देवी दुर्गा की लोग आराधना कर रहे हैं। जो शिव शक्ति है, जो त्रिलिंग गुण समृद्ध है, देवी दुर्गा जी की आराधना कर रहे और माता की पूजा करते गौरी वैष्णव एकमात्र राधा जी के चरण कमल का आश्रय करते। बोले क्यों कि विश्व भर में सभी संसार में शास्त्रों में सर्वत्र राधा जी की महिमा का वर्णन किया है। जैसे ऋग्वेद के अंतर जब देखा जाए राधया माधव देवो माधवे नई वस्ते राधिका राधा जी के साथ में माधव और माधव के साथ में राधा जी। और देखिए राधा उपनिषद में वर्णन करते हैं कृष्ण राधा इति राधा कृष्ण जिनके आराधना किया करते हैं जिनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए जय श्री राधे कह करके अपना मस्तक लुटाते हैं चरणों पर सिर को झुकाते हैं राधा जी के चरणों उन्हें प्रणाम करते। इसलिए कृष्ण के हृदय सर्वस्व विश्वभानुनंद ने राधा जिनके कारण उनकी सारे लीलाएं जो कि वेदांत के रस वही सभद्वा रस खन ब्रह्म वे रस का आस्वादन करते हैं पूर्ण सत्य विश्वभानुनंद ने श्री राधा जी के साथ जो कि कहा है जा परा परम शक्ति महाविष्णु स्वरूप ही विश्वभानुनंदिनी राधा जी कौन है सर्वश्रेष्ठ शक्ति जा परा परम शक्ति वह परा है परमा शक्ति है महाविष्णु स्वरूप ही और देवी दुर्गा जी कौन है अच्छा अवरिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी उस राधा जी की एक छाया स्वरूप आवरी का शक्ति जिनको महामाया कही जाती है अखिलेश्वरी देवी दुर्गा जी जिनके द्वारा जया सर्वम जगत मुग्धम सर्वे देहाभिमानी जिस माया के द्वारा समस्त जगत मुक्त है जिस देवी के कारण समस्त जीव इस शरीर में अभिमान करता है कि यह शरीर में उस माया के द्वारा देवी दुर्गा भी दो प्रकार से एक योगमाया स्वरूप में और दूसरे महामाया रूप में। महामाया रूप में जीवों की जितनी कामना वासना इच्छाएं हैं उन सब को पूर्ण करती हैं और खिलौने के रूप में संसार के लोला दे देती है बच्चों को लोला दे दिया बोले जाओ उसी में मसूल हुआ। तो ये एक प्रकार की वंशता है कोई कृपा है और दूसरी बार कुलदेवी योग माया मोरे कृपा करी आवरण संपरी में कभी विश्वदनी और योग माया स्वरूप में कुलदेवी दुर्गा की क्या करती है माया के आवरण को हटा देती है कृष्ण के साथ में संयोग कराती भक्त भगवान का मिलन कराती। इसलिए जितने भी वैष्णव है वे सभी परमा शक्ति विश्वभानुनंदिनी श्री राधा जी के चरण को उनका आश्रय करती करते हैं। बोले क्यों बिना राधा जी की कृपा के उनकी करुणा के उनके भाव के एक काम प्राप्त किए बिना कृष्ण की प्राप्ति भी संभव नहीं। इसलिए कृष्ण किसके वशीभूत है? जिनका सर्वोत्तम प्रेम उन्हीं के वशीभूत होते हैं। वह सर्वोत्तम प्रेम की स्वरूपा कौन है? वृषभानंद ने राधा जी। इसलिए विष्णु पुराण में कहा है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवयिता विष्णु अत्यंत बल्लभा। वृषभानंद ने राधा जी कृष्ण की जिस प्रकार अत्यंत अत्यंत रूप से प्रिया है, वैसे उनका कुंड भी अतिशय प्रिय। समस्त गोपियां जिनके चरण कमल की आराधना करती हैं, जिनके चरण रहस्य तो आधार मूर्धनी जदा फुरदार गोप्य ब्रज गोपियां, जिनके चरण रहस्य को अपने मस्तक पर धारण करके उनके भाव में डूबना चाहती हैं, डूब करके तब कृष्ण की सेवा करती। इसलिए जब तक राधा जी की कृपा नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं, जीवन निशा। इसलिए वृषभानंद ने राधा जी कौन है? श्री रघुपुर स्वामी पाद वर्णन करते महाभाव स्वरूप गुणई रतिर मरी असी, जो कि महाभाव की स्वरूप है। प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव। उस महाभाव की गुण दे राधा जी, जो कि अपने प्रेम के भाव में समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करते। जब वृषभानंद ने राधा जी विरह में अधिक रूप करके रोते, उस समय विश्व जगत का ऐसा कोई प्राणी नहीं जो रोए, सभी को रुला दे, सभी को आकर्षित कर ले। ब्रह्मांड क्षोभ का अधिकतम ब्रह्मांड भी क्षुब्ध हो जाए, क्योंकि कृष्ण के मिलन में, कृष्ण के साथ मिलन में सत सत युग उनको क्षण भर में निकल जाता है। और कृष्ण के विरह में एक निवेश, एक क्षण, एक पल उनके लिए सत सत युग के समान प्रतीत होता है, इतना भारी पड़ जाता है। ऐसी महाभाव की मूर्ति है। एक समय जबकि कृष्ण अप्रूल की प्रार्थना पर राजी हो गए और जाने के लिए कि मथुरा जहां पर बिना जाए देव की मछले उद्धार में नहीं होता, दुष्ट कंस का वध भी नहीं होता और सारे कार्य भी नहीं संभव। उस समय एकांत में राधा जी के पास में पहुंचे, उनसे आदेश लेने के लिए। तब राधा जी के साथ में जब बातें होने लगी, उस समय कृष्ण कहते हैं, देखो राधे तुम मुझे आदेश, मैं उन दिनों के लिए जाना चाहता हूं, अन्यथा और सारी लीलाएं नहीं हो पाएगी, बहुत से कार्य करना है, देखो जाना ही पड़ेगा, मुझे तुम आदेश। राधा जी कहती है, मैं आदेश भी नहीं दूंगी और जाने भी नहीं दूंगी। मैं यदि ऐसे ही जानती कि यहां आकर के तुम्हारे विरोह में रोना पड़ेगा, पिछड़ना पड़ेगा, तो मैं गुरु वृंदावन ले जाती वहां से आगे, और आकर के क्या हुआ, और रोना ही पड़ेगा। तब कृष्ण समझाने लगे कि देखो राधे, एक बात है, मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हारे जो भाव की माधुरी है, प्रेम की पराकाष्ठा, यही विश्व जगत को तो दिखाना है, इसी को प्रकाशित करना है, यह तो एक बढ़ना बात है। असल में क्या है, कृष्ण तो चाहते हैं कि राधा जी के भाव माधुरी कितनी है, प्रेम की पराकाष्ठा कितनी है, उसको देखना है। जब कृष्ण ने बार बार राधा जी से कहने के लिए मना किया और भी कहा कि राधे एक बार मेरा भाव कि मेरे जाने से तुम रोएगी नहीं। राधा जी कहती है, क्या आंसू को रोका जाता है? यह तो कदापि संभव नहीं, आंसू तो अपने आप चला जाता है, उसको रोका नहीं जाता। तो भी अच्छा मैं प्रयास करूंगी। कृष्ण बार बार कहते हैं मेरे रास्ते में, यदि तुम रोओगी तो मेरा रास्ता रुक जाएगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा। तो राधा जी कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं आप जाए। तो कृष्ण और जाते और छठ पर जाने पर ब्रज गोपियों को क्या दशा है, कितने चरण विरह दशा है, विरह में तरसते हैं, राजा जी विरह में उन्मादनी हो गए, दिव्य उन्माद की स्थिति में आ गए, 3 महीने तक अन्न जल छोड़ दिया, कृष्ण वहां से मथुरा में कंस का वध किया और उसके पश्चात देवकी वसुदेव को जेल खाने से मुक्त किया। देवकी वसुदेव ने जल्दी से जल्दी कृष्ण बलराम को उपनयन संस्कार भी दिलाया और दे करके साथ ही साथ भेज दी उज्जैनी में, गुरु शांतिमणि के वहां काफी दूर भेज दिया कि ये ब्रज को भूल जाए, पुरानी बातों को सब भूल जाए, अब नई स्मृति में जुड़ जाए, तो ये सब कुछ इसलिए मैंने दूर भेजा पढ़ने के बाद। ठीक 64 दिन में 64 कला विद्या है सीखी और गुरु दक्षिणा आदि देते हुए जब के लौट के आए 3 महीना हो गया, यमुना की धारा को बहती हुई देखकर उनके मन में सारी स्मृतियां उमड़ आए, अपने को रोक नहीं पाए। ऐसे समय में अधिक रो करके रोते हुए कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। हे हे तुम जाओ, पिता माता को शांत रख दिया और मत संग से विमोच से मेरी प्राप्त पदा पिता ब्रज गोपियां जो मेरे विरह में बड़ी अधिक है तरह गई है, प्राणाधारण उनकी कथन चल बड़ी कष्ट से किसी प्रकार प्राण धारण कर लेंगे, इसलिए कुछ ये संदेश वचन है इनको सुना करके उनको समझाना चाहता। ये सभी बातें कहकर के तो उद्धव को भेजा, परंतु राधा जी के गोपियों के भाव को उस दिव्य अनुवाद को देख करके उद्धव जी ने क्या देखा क्या सोचा कि हिमालय के समान उस हिमालय सदी महान प्रेम के सामने सिर झुकाए हुए बैठे हुए हैं। राधा जी दिव्य अनुवाद में अंतर दशा में डूबी और ऐसी स्थिति में एक ही बातें करती, ये तो हुआ उस समय की बात। परंतु उद्धव जी क्या प्रार्थना करते हैं कि एता परम तनुभृतो भूमि गोप बद्ध गोविंद एव निखिला बने रूढ़ भावा पाच्छन्ति जद भव वियो मुनयो पयम् कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस। और वे कहते हैं हम सभी प्रार्थना करते हैं अभिलाषा करते हैं उस भाव के एक कर्म प्राप्त हो पर मिलता ही नहीं, कि ब्रह्म जन्म भी ब्राह्मण कुल में जन्म और कल्प समान प्रार्थ समान ब्रह्मा जी की लंबी आयु जैसे प्राप्त कर ले तो उससे हमें क्या मिले कुछ भी है यदि जीवन में इस भाव के एक कारण प्राप्त नहीं। उद्धव जी तरस है और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा शिव नारद व्यास पृथ्वी शरद समुद्र बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सभी प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी सौंपो शिल रूप को सारे बात करते राधा जी का राग कैसा है हिंदू राग भरेगी ब्रह्मांड हर मोदरे चित्राय रम्याणि राधा जी के वो विचित्र दिव्य अनुवाद भाव वे सभी ब्रह्मांड रूपी भवन के अंदर चित्रकारी करके रख दिया जो बड़े बड़े सनन समंदर सनातन बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े महान सभी देख करके चमत्कृत आश्चर्यचकित रहते ऐसे राधा जी के भाव है। आप देखिए शिव विद्यापति और चंडीदास चंडीदास के राधा जी के एक भाव का बहुत से कीर्तन उनमें से एक छोटे से पद में ही जो कि कीर्तन बड़ा है उसमें एक छोटा सा पद होता है। राधा जी कहती है भविय छिलम यतिन भुवने आर के मोरया छे राधा मलिक कहती कहती भाभी असिला होते दे लखू बने आर के हमर यार से मैंने सोचा इस संसार में सबके लिए कोई ना कोई जीवन का सहारा है, ऐसे मेरे भी जीवन का एक सहारा है, इसलिए हमने कृष्ण के चरणों में अपना मन काम हृदय सर्वस्व समर्पण कर दिया। आज वही श्याम सुंदर युवती छोड़कर दूर चले गए, अब तो वही जीवन का सहारा देगा और राधा को लेकर सुधाई दे रहे, अब तो कोई बंसी ले राधा के लड़के को करेगा से, और किसके सहारे जीवन में खड़ी हूं, किसके सहारे जीव, अब तो मेरे जीवन का सहारा कोई नहीं रहा, कुछ तो मैं राधा जी बिना नहीं, कितनी व्यवनता हुई जहां अपने हृदय में शुद्ध सांप्रति कि हमारे जीवन का और कोई सहारा, और वही वंशी में बजाय जा रही राधा राधा और कोई पुकारे कृष्ण दूर से आप कैसे उस समय राधा की विरह में अधिक होकर एकदम मूर्छा की स्थिति में पहुंच जाती है, एकदम मूर्छित हो जाती है, कोई भी भक्त अधिनाम करते कि यदि इस बात को सोचे और ऐसे पदों को स्मरण करें कि हमारे जीवन का और कोई सा वही श्याम सुंदर ही हमारे जीवन के साथ उस समय क्या हृदय पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, फटेगा या नहीं फटेगा, हृदय अवश्य फटेगा। इसलिए चैत्र महाप्रभु जी जब पूरी धाम से लौटे गया से लौटे पूरे धाम में गया ईश्वरपुर पास से नौकर और कृष्ण भाव के सदा समुदाय डूबे थे, जबकि नवद्वीप में पहुंचे दिवारात्र भाव में बैठे दिवारात्र कृष्ण कृष्ण कह करके लौटे, इधर को देखते उधर बैठी उन्हें मुरली धर श्याम सुंदर दिखाई देते, पिता पर बैठे उनके गले में बढ़ा जिधर को देखे उधर नहीं कृष्ण, वहां प्रभु जी दौड़ करके जाते हैं कृष्ण को पकड़ने के, श्याम सुंदर को पकड़ने के, राधा भारत में तो डूबे हुए पकड़ नहीं पाते, इधर दौड़ते उधर दौड़ते मूर्छित होकर के गिर पड़ते, राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शन जैसे उद्धव जी के जाते राधा जी के जैसे दिव्य उन्मान में भाव प्रकट हुआ, ऐसे महाप्रभु जी में अब देखिए उधर महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर जाते वृंदावन वृषभानंदिनी राधा जी कृष्ण के विरह में अति वृंदावन को जाते वृंदावन में जाकर के ऐसे भाव में डूबी रही है, उस समय उन्हें वही दिखाई देता है कि मुरलीधर श्याम सुंदर वृक्ष के आग में खड़े हैं, उन्हें देख करके दौड़ती है कि कृष्ण को मैं पकड़ लू, फिर वहां जाकर के लेती हूं वहां नहीं ये लता के आग में उधार दिखाई दे, तो कृष्ण वहां पहुंचे फिर वहां दौड़ करके जाते, इस प्रकार दिव्य उन्मादिनी प्रेम पारिणी वृषभानंदिनी जो राज दुलारी है वो वृंदावन में उन्माद की स्थिति में दौड़ रही, इस तरह से जिधर देखती है जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरी, जहां जहां उनका नेत्र पड़ता है वहीं पर कृष्ण की स्फूर्ति होती है, कृष्ण को देख करके आपके सामने देख रही है दौड़ती है, इस तरह से वृंदावन के कुंजों में लता लताओं में पताओं में पेड़ों में आर में श्याम सुंदर को देख करके दौड़ रहा उस समय दौड़ती हुई राधा जी उन मार्ग की स्थिति में मूर्छित होकर के गिर जाती। ऐसे समय में कृष्ण तो वहां भी है ब्रज में, परंतु रूप में आगे में छिपे तो हुए हैं, वे तो दूर हटे नहीं है, वृंदावन से दूर तो गए नहीं, वे तो वही है परंतु आगे छिपे हुए। राधा जी के उस दिव्य उन्माद को देख करके, उस विप्रमय भाव को देखकर कृष्ण स्वयं झुक गए। उस समय घुटने टेक करके प्रणाम करने लगे, धन्य राधे धन्य प्रेम सुंदरा धन्य तुम्हारा प्रेम, हे राधे धन्य तुम्हारा ये दिव्यमय मैं प्रेम, ये ब्रज प्रसुंदरा धन्य है, इस प्रेम के साथ में चिरगिणी। इसलिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, न पायाम निर्बत संयुजा ससाज नृत्य विविध आयुषावती वर्ष, जो वेदांत के पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण उदय सति, ऐसे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज विलासी आज वृषभानंद निराधा जी के प्रेम के सामने वे झुक गए। बोले मैं प्रेम के प्रेम से सदैव ऋणी रहा, देवताओं की आयु पात्र के भी कदापि इस प्रेम से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज विलासी सुख प्रेम हमारे हैं, जो प्रेम रस का आस्वादन करते, इस प्रकार विरह अनुवाद में एक और कृष्ण द्वारका में बसे दिवारात्र ब्रज गोपियों के लिए राधा जी के लिए दिवारात्र रोते हैं, और इधर राधा जी विरह बैकुंठ घूम करके रोती उन्मादनी प्रेम पागलनी बनी। ऐसे ऐसे दिव्य उन्माद की स्थिति में जहां पर चित्र जल्प के सभी प्रकार के भावों का वर्णन, ये सभी राधा जी में प्रकाशित, और इन भाव की चमत्कारिता को देख करके स्वयं मुक्त हो गए। जैसे कि जब महाप्रभु जी रायमंदिर के साथ में बैठे हुए पुस्ते 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 अंत तक पुस्ते ही चले गए, राधा जी के महाभाव का सभी कुछ पूछ लिया। अंत में रायमंद जी बोले कि मैंने और क्या कहूं, और तुम मेरे पास कुछ नहीं, मैंने ये पद बनाया, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं सुनाऊं। उस समय भी कहते हैं पहले ही राग नयन भंग भेल अनुदिन पार अवधि न गेल, पहले एक दूसरों में हमारा जो मिलन हुआ था वो किसी ने मिलाया, कोई दूति ने मिलाया नहीं, और कोई पुरोहित ने गांठ जोड़ किया नहीं, वही भी संबंध देता वही प्रेम का संबंध, प्रेम ने ही एक दिन मिलाया था, और उस प्रेम ने आज हमें पीछे कर दिया अलग कर दिया है। अब वही प्रेम यदि जीवन में कभी मिला दे तभी संभव। अब तो मैं ये किसी से कह नहीं सकती कि आप हमें कृष्ण से मिला दें, किसी से निवेदन करूं कहूं यह भी संभव, प्रेम जने एक दिन मिला दे तभी कृष्ण से मिलन संभव। उस समय महाप्रभु जी राय रामचंद्र के मुख पर हाथ रख दिया, राय पर मत बोलो अब मुझसे छुटा नहीं जाएगा, ऐसे दशा के हुए ये सभी भावों का वर्णन किया है। इसलिए कोई भी साधक भक्त कृष्ण का नाम ले कीर्तन करें महामंत्र का जप करें, अवश्य अवश्य हमारे गोस्वामी ग्रंथों का अवलोकन करें और उनका अनुशीलन करें, बिना अनुशीलन के नहीं होगा, तो हमारे गुरु वर्ग ये और गोस्वामी लोगों की कृपा करुणा कैसे मिले। इसलिए उनकी कृपा के साथ ये ग्रंथ सभी ऐसे भक्ति रस के ग्रंथों का अनुशीलन करें और भजन करें तो हृदय भावमय होगा, प्रेममय होगा, रसमय होगा, निश्चित रूप में विश्वभानंद मेरा है अवसर उनकी कृपा करना मिलेगी, वे अवश्य कृपा करें। इन्हीं कथाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य यही करता हूं।
और सुंदर प्रेम की और विशेष करके राधा प्रेम की अभिव्यक्ति, उच्च से उच्च जो महाप्रभु जी ने प्रश्न करके रामानंद जी से श्रवण किया वहां तक पहुंचा दिए। अब श्रीमान माधव महाराज जी संक्षेप में कुछ हरि कथा परिवेशन कर
करते करते राघव पार होकर सुख भरवर में पहुंचते हैं उस समय के लीला गुरु जी बताया था कि किसी समय ब्रजनंदन श्याम सुंदर के मन में कुछ ऐसे भाव आया कि गोपियां प्रतिदिन शिविर से जाकर के उसको चयन करती हैं, तो कृष्ण क्या किया, गोपियों को पहुंचने के पहले ही एक बड़े पुष्प पेड़ पर चढ़ गए और अपने विश्वम रूप से एक गालिया को नीचे झुका दिया और कृष्ण की इच्छा से उस पेड़ में बहुत सारा फूल खिला हुआ था। राधा जी अपने सखी के साथ फूल चयन कर रही हैं, क्यों, मलादूत के कृष्ण को पहनाएंगी, सब सखियां फूल चयन कर रही हैं और कृष्ण धीरे धीरे उस गाले को झुका दिया, पुष्प चयन कर एक हाथ में डालियां पकड़ी दूसरा पुष्प चयन कर रही है। इतने में ब्रजनंदन श्याम सुंदर ने क्या किया, दूसरे डालियों को पकड़ करके जहां पर पैसे दबा के रखा डालियों को उसको छोड़ दिया, केवल छोड़ा स्त्री के भांति ये ऊपर चढ़ गया डाली, तो राधा जी अब जुड़कर एक हाथ पकड़ करके और तैयार में माइना में मरी ऐसे कर रही है। कृष्ण आकर उनको पकड़ लिया तो देख करके सदर हंसने लगी। फिर जब कृष्ण पकड़े राजीव को कृष्ण जब पकड़े हुए हैं और जो सखियां हैं मंजर देख करके मतलब मुस्कान कर रही हैं, राधा जी समझ ना सकी, सोचा ना कि सखियां ही होंगी, उनकी मंजरियां थी वो भी हंस रही हैं। तो फिर राधा जी तरफ इशारा कर रही है, राधा जी और जो पकड़ लिया तो गोपियां खिलखिला कर हंस पड़ी और इशारा करने जो जिसको तुम पकड़ रखी तो मुख्य और देखो, जब देखा ये श्याम सुंदर है तो उनको छुटा करके आ गई, ये देख करके सदर हंसने लगी तो साधक जो समाधि अवस्था में थे वो तो फिर आकर हंस पड़े। असब प्रदत्त रोती, अब रोते किस समय है, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस समय आऊंगा मिलूंगा, पहले से ही वचनबद्ध थे। आए समय राधा जी सखियों के साथ अभिशाप करके संकेत स्थान में आई पर कृष्ण आए नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और राधा जी पहले अभिशाप किया कि धीरे धीरे जो स्टेज है जो वर्णन किया शास्त्र में और कृष्ण आए जब अंतिम रात में राधा जी से बात नहीं किया क्योंकि ललिता उनको बताया धूर्ते रविंद्र तमय सुष्ठ ब्राह्मण राधे नमामी। बता देखो अब वो कला आ रहा है, तुम तरफ देखना मत, अगर तुम देखेगी मान लेगी तो तुम्हारे वसूत नहीं रहेंगे, देखो तुमका कहीं कभी विवेचन भी नहीं है, वचन दिया मैं आऊंगा देखो आप कहीं चले गए, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना है। कृष्ण आए राधा जी की इच्छा है थोड़ा देखू, ललिता जी खड़ी है दूर से, ऐसा राधा जी क्या है, मान गुमान लोकप्रिय ताड़ी गर्भ कुंज बिहारी, राधा जी के मान गुमान लकुट देख करके कृष्ण डर रहे हैं और राधा जी इच्छा है थोड़ा देखू, देखा ललिता है या नहीं, जब देखती है राधा जी चुप हो जाती है। फिर कृष्ण बहुत अनुनय विनय किया जी माने ही नहीं, कृष्ण चले गए। फिर सखियां आई राधा जी कह रही है मर तू मन में कृत परिहासम, मैंने सोचा कि मुझसे परिहास किया, जो इतना बताया बताना देखना मत, देख तरफ कंट्रोल में रहेंगे नहीं तो तुम इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती हैं। जब राधा जी ऐसे विलाप कर रही हैं रो रही हैं इसको समाधि अवस्था में देख करके वो क्या करते हैं साधक जो समाधि अवस्था में रो पड़ते हैं, ऐसे ही एक तरह लीला देखते हैं मन में पलटते हैं, हम ये कैसे सोच सकते हैं कैसे समझ सकते हैं कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये केवल मात्र संभव है श्री चैतन्य महाप्रभु की वही कृपा से। ये हमारे जब कृष्ण भगवान होने पर भी ज्योतिष लीला की लीला को अनुसरण करने की इसको प्राप्ति करने उपाय कृष्ण नहीं बताया, कौन बताया, कृष्ण तो कृपा तो है ही है, उससे अधिक कृपालु श्रीमती राधा महारानी और कृष्ण ही राधा जी के भाव का स्मरण करने के लिए राधा जी के भाव को और अंगदान को लेकर के जगत में आए थे। आकर जिस पद्धति को बताया इस पद्धति को सबसे संपूर्ण रूप में विशद रूप में कौन वर्णन किया? सिचेतन महाप्रगति अपरिकार समय बात दिखाया हमें कैसे क्या करना पड़ेगा। स्वरूप समय बात जो कुछ भी उपदेश हमारे ने दिया एक श्लोक में समस्त क्लियर करके बता दिया। तम नाम चरिता कृष्ण के नाम जगत में दो वस्तु है तब वस्तु तम वस्तु तब अर्थन भगवान तम अर्थन जी तम नाम भगवान के नाम भगवान के जितने भी नाम है समस्त नामों के साथ एक एक लीला जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई भी नाम भगवान का स्थल तो नहीं है, सब नामों के साथ एक लीला है, लीला की वजह से ऐसे नाम पड़ा भगवान का। जब तक ये सब नाम नित्य है होने पर भी इस जगत में जब आते हैं उनके साथ एक लीला जुड़ी होती है। तो नाम रूप और उसके साथ भगवान के रूप, भगवान के बहुत प्रकार के रूप होने पर भी श्रीमद् भागवत में तीन प्रकार रूप का वर्णन किया गया है।
ठीक,
एक जगतपुत्री के द्वारा, एक
अरे हरि कथा होगी इसके बाद में कुछ
आदि गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा, और तीसरा ब्रज गोपियों के द्वारा। बरहागुणम नटवर गोपु कर्मयोग निकारम विप्रद दास कर्ण कवि संवैयंती च मालम रंध्रान देव रसदया प्रयन गोप हिंदई वृंदारण्यम प्रविश समदवनम प्रविश गीत गीति। जब कृष्ण गोचरण करने के उपरांत ब्रज में तीन लोग रहे हैं उस समय गोपियां इन लोगों का वर्णन किया ही है। जिनका तीन प्रकार के रूप वर्णन होने पर भी गोपियों के द्वारा वर्णित जो रूप है सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम रूप चरित आदि चरित्र पद उनकी लीला, लीला के बहुत प्रकार के हैं, उसमें सबका रस सात्सल रस मधुर रस की लीला सर्वश्रेष्ठ है। इस लीला में मैं एक उदाहरण देता हूँ, कैसे कृष्ण अपने सखा के साथ खेल रहे हैं। खेल में श्रीराम जी आज जीत गए, सब सखा ने ताली बजाए, कृष्ण राम जीत गया। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने क्या किया, अपने आप एक ताली बजाने लगे। सखा ने पूछा अरे कान तो ताली क्यों बजा रहा है। कृष्ण ने बताया क्योंकि मैं जीत गया श्रीराम हार गया। ये कैसी बात है, सबने देखा श्रीराम जीत गया तू हार गया। बोले देख जब श्रीराम मेरा छठी पर चढ़ा हुआ था और श्रीराम का ये नाक नीचा था और मैं जमीन में लेता हूँ होने पर भी मेरा नाक ऊंचा था, मेरा नाक ऊंचा हमने के कारण मैं जीत गया। तो सब सखा लोग आए चुट कहीं का। तब तीसरे बता देख एक बाबा उसे बैठा हुआ है, चल उनसे पूछते हैं। बाबा कौन थे? दुर्वासा ऋषि। तुम तो मन में सम ये ऐसे भाव आया, कहो ये है कौन? ये स्वयं भगवान सरेश्वर के पूरा भगवान है, यह नंद के लाला है, ये तो सारे मनुष्य को बात कर रहा है, ये कैसे हो? तो भगवान ने भगवान तो गया आई तो उनको पिता करना चाहा। आए उनके पास कृष्ण बोले बाबा देख तू सच बोलना, मैं जिनका श्रम हार गया ना। श्रम बोले बाबा देख तू ब्रज में आया भजन करने के लिए और तू तो सब लोग जानते हैं ब्रज में झूठ बोलता है, इसके बाद में तू बिल्कुल मत आना नहीं होता तो भजन सब चौपट कर जाएगा। बाबा मैं जीत गया ना हार गया ना क्या करूं, बोली के बोली इतना मिठास है तो समझ में नहीं आ गया। तो ऐसे बोलते बोलते सोचते रहते ऐसे हो गए, इस रूप में समा गए। सेकंड के अंदर अनंत ब्रह्मांड घुमा दिया, फिर कहीं लीला कहीं चल रही थी। जब ऐसे पूछा दुर्वासा से ऐसे खोला कृष्ण निकल आए, चल रहा ये बाबा कुछ नहीं जानता है, बाबा तो गुंगा है क्या बोलता क्यों नहीं। कि श्रीराम का बाबा तू बहरा है क्या, सुनता सुन नहीं पाता है। श्रीराम बोले देखो बाबू गास है इसे कोई बात करना ही नहीं है। तो श्रीराम ने क्या किया, एक बार गाड़ी पकड़ा और एक बार कृष्ण ने पकड़ा, तो बाबा गुंगा है बहरा ऐसे करके चले गए दोनों। अब दुर्वासा नहीं थे सभी से ठहरे गए रह गए। ये सुख रस की लीला है और वात्सल्य रस की कैसे दसों में कैसे बंधन दिए जानते ही है आप लोग। और गुरु जी से मुख से सुना कैसे ब्रज गोपी का कृष्ण की लीला है, ये लीला सब अपने आप लीला का अनुसार चिंतन करेगा। पर नाम उसको चरिता जी सुकीर का नानु, ये शुद्ध वैष्णव और गुरु के सुनने के बाद कीर्तन करना पड़ेगा। پہلے سوگم اس کے بعد کیرتن جو گرو گوسائی مہاراج سنکیرتن نام ہے انوت میں سوانا کیرتن کرنے پر تب سنکیرتن ہوگا کیرتن آپ نے سنکیرتن کہا جب آپ شدھ ویشنو سے گرو مرتی کے سوگم کریں گے پھر جب کیرتن کریں گے تبھی سنکیرتن ہوگا اپنے آپ کبھی سنکیرتن نہیں ہوگا اور کیسے سنکیرتن انوت انوت میں اور میں سب کر لیا کہ ہمارا گرو نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور میں ایسا نہیں چلے گا اس میں بھگوان ریجن ہے نہیں وہ سب کچھ نہیں ہوں گے سکیرتن انوت نہیں آج کی آپ دو دن چھوڑ جائے سے نہیں انوت نرنتر کرنا پڑے سکیرتن سمتو پرمین رسنا منوشین یج پہلے آپ کی رسنا پہلے جیوا کو اس میں لگاؤ بھگوان کے سوان کیرتن میں ارتھات جو گنگان کیرتن کرو تب سمرن ہوگا कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई भजन निर्जन संभव जितना अधिक रूप में कीर्तन होगा सुकीर्तन होगा तभी शुद्ध रूप में स्मरण होगा सुकीर्तन रसना मनुष्य कीर्तन ब्रजे ब्रज में रहना पड़ेगा कैसे दूषिता है ब्रज का छोटा स्थान कैसे रहें ब्रज में लोग ब्रज में आ जाए तो कैसे स्थान मिलेगा इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है केवल राष्ट्र लीला के समय कृष्ण के राष्ट्र एक सौ करोड़ गोपियां थी और एक सौ करोड़ गोपियां राष्ट्र में थी तो सखा कितने लोग थे कितने गो बछड़े थे कितने माताएं थी कितने नंद बाबा के सखाएं थी कितने नौकर थे तो कैसे ब्रज में थे इसलिए ब्रज में इतनी शक्ति है धाम संकोचन विकोचन होता है कृष्ण ब्रजे अगर संभव न हो शरीर के द्वारा तो मन के द्वारा रहना ही पड़ेगा बिना व्रत के रंग में रंगाए मन से कोई भजन नहीं कर सकते कृष्ण को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते कृष्ण ब्रजे तो वैसे रंग नहीं होगा रंगे पर पदार्थ रागी उसके जो अनुरागी जन है उनके अनुगत में रहना पड़ेगा जनानुगामी उनके जो अनुगत जन है उनके नियोजन है उसके अनुगत में रहना पड़ेगा ऐसे करने पर क्या होगा तभी हमारा भजन में सिद्धि होगी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं रघु वचन पर तीन बार अनु सब काल में बताया कि हर नाम ही केवल कल नास्ते 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 गति रंग था कल युग में केवल हरिनाम 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 किसी तरह गति नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे ही भजन करने के लिए सुखी परमाणु पदानुरागी अनु जनानुरागी अनु तीन बार अनु सब वचन में उच्चारण किया इसमें क्योंकि हमें अनुगत में रह करके निरंतर रह करके ग्रह में रहकर भजन करना पड़ेगा कभी भजन में सिद्ध है किस समय संभव है या कभी संभव नहीं हमारा समय हो चुका है गुरु जी अभी बेल लगा दिया कि ये नहीं सकते कि गुरु जी अनु आनंद हो गया बेल से रात नहीं पर समय सीमित है इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ पंचाकों को गरीब भक्त के
शिवाय हमारे अभी वृंदावन से आ रहे हैं रसानंद ब्रह्मचारी जी अभी संक्षेप में वो भी कुछ बोले अधिक समय नहीं लेना है संक्षेप में बोलेंगे 15 मिनट
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधाकरावचितपल्लभवल्लरिते राधाप्रदान्तविलस मधुरस्थलीते राधाञ्जसमुखं खङ्गाम्बलिके राधाविहारविदिने रमतां मनोमे बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम हरि राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्री श्रीनाथ भक्ति श्री रूप श्री झांसी गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग प्रणवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिद्धा गुरुपाद पद्म परिपराज का आचार्य विद्यानंद स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिधनिपाद गण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथाजुल के प्रणाम है। आज हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है जिसको श्री नाथ श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, दुर्लभम मनुष्य जन्मम देखिनां क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। जब श्री वसुदेव महाराज यज्ञ कर रहे थे, जब यज्ञ के बीच में श्री नारद जी प्रधान थे, उसी समय वसुदेव महाराज अपना भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते दुर्लभ मनुष्य जन्म, कहते बड़ा भाग्यवान असतन भाव, बड़े भाग्य से ये मानव जन्म प्राप्त होता है। उसी में भी दुर्लभ है अगर जीवन में कहीं सत्संग हो, जिसको श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, क्षणार्थ अपनी तथापि क्षणार्थ अपनी सत्संग सेवन निर्णा। कहते एक क्षण नहीं, कहते एक क्षण किसे कहते हैं, कहते एक सेकंड को ग्यारह भाग करो उसको एकाउन भाग को एक क्षण कहते हैं। कहते एक क्षण नहीं, कहते क्षणार्थ मतलब एक क्षण का आधा समय। तो समझो अगर जीवन में एक क्षण का अर्ध समय अगर जीवन में सत्संग की प्राप्त होता है, जिस सत्संग द्वारा कहते न स्वर्ग अपना पुनर्भव, जिसको साथ में स्वर्ग और अपनर्भव मतलब मुक्ति है, जिस सत्संग को साथ में स्वर्ग और मुक्ति को भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं, अगर एक क्षण का अर्ध समय अगर जीवन में सत्संग की प्राप्त हो। इसलिए जीवन में हमारा बड़े परम सौभाग्य है आप लोग आज श्री महाराज जी का श्री चरण में आप लोग बैठे हुए। एक समय की बात है, श्री जी वो समय से विचार देते हैं, भगवान एक समय सारे शास्त्र को नहीं बुलाया, शास्त्र को बुलाकर पहले वेद को खड़े करते, कहते वेद तुम बताओ वास्तव रूप में जीव को परम शांति की प्राप्ति कैसे होती है, और शांति केवल भगवत भक्ति से प्राप्त होता है, आप बताओ आपका क्या विचार है जीवन में भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है बताओ। पहले वेद खड़ा हुआ, वेद खड़े होकर के अपना सारे उन्होंने प्रवचन दिया, जितने सारे भगवत प्राप्ति का जितने मार्ग को उन्होंने बताया, भगवान सुन सुन करके भगवान ने कहा हाँ मुझे कुछ बताया है लेकिन मुझे संपूर्ण संतोष नहीं मिला, लेकिन कुछ बताया। तो उन्होंने उपनिषद को खड़े किया, कहते उपनिषद बताओ भक्ति प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो उन्होंने बताया सांप बरान रखती ईश्वर है, कहते ईश्वर में जो बरान रखती है कि उसको द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, वहां भक्ति मिलती है। तो उपनिषद में बड़े अपना श्रुति को उन्होंने सुनाया बड़े जोर जोर से, भगवान सुन सुन करके बोले ठीक है तुमने कुछ तो बताया लेकिन मेरे को संतोष नहीं मिला। तो उन्होंने वेदांत को खड़े की वेदांत बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तो वेदांत ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादश जतः और शास्त्र ज्योतिषा को उन्होंने एक 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 अपना सूत्र को उन्होंने बोले आनंदमय अभ्यासात एक एक सूत्र को उन्होंने बोले। उसको सुन करके भगवान ने कहा हाँ तुम ही कुछ बोले हो लेकिन मुझे संपूर्ण प्रसन्न नहीं हो लेकिन कुछ बोले हो। तो उन्होंने पुराण को खड़े किया, कहते पुराण तुम लोग बताओ क्या तुम्हारा विचार है जीवन में भक्ति का प्राप्त करने का क्या मार्ग है। तो पुराण भी खड़े होकर के हाँ वर्णाश्रम आचार व्रत पुरुषा परमान विष्णु राधा प्रथम नान तप सतारण और अन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता भक्ति उन्होंने भी बड़े बड़े अपने श्लोक उन्होंने भी बोले। भगवान सुन सुन करके हाँ तुम भी तो बहुत कुछ बता रहे हो लेकिन मुझे संपूर्ण खुश नहीं हुआ। तो उन्होंने भागवत रूप है कि भागवत तुम हो अर्थ ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्र भाव स्वरूप वेदांत परिगणित यदि जो भागवत ग्रंथ है सारे शास्त्र का निचोड़ है सर्ववेदांत सार ही श्रीमद् भागवत विषय सर्वशास्त्र सार सार समुद्रित ये भागवत सारे शास्त्र का सार सार है यदि भागवत हम तुम्हारा मुख देख करके हम बैठे हैं सर तुम ही सही विचार बताओ बताओ तुम्हारा क्या विचार है जीवन में भगवत प्राप्त करने का क्या उपाय है वास्तव रूप में जीव को बड़ा शांति कैसे प्राप्त होती है तो भागवत खराब कर गई तो हमने दो श्लोक बताए एक श्लोक श्री भरत महाराज रघुवंत महाराज को उपदेश देते हैं और दूसरा श्लोक है श्री प्रह्लाद महाराज जो बोलते हैं पहला श्लोक बताए कहते रहु गणे न तपसा न जाति न इच्छया न निर्वात्मना गृहद्वा नैव छन्दसा नैव जलाग्नि बिना महत् पदो रजो भिषेकम् श्री भरत महाराज कह रहे हैं रघुगण महाराज रघुगण न तपस्या अगर कोई तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो तपस्या से भगवान नहीं प्राप्त होते हैं अटंत तीर्थानि पठन्ति जागवान इसलिए इसको द्वारा भगवत प्राप्त नहीं होता है न जाति कोई बोला हम बहुत बड़े जाति बहुत बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है हम त्रिवेदी चतुर्वेदी भट्टाचार्य छठाचार्य जाए क्या उससे क्या भगवान मिल जाएंगे कहते न जाति कहते इच्छया कहते दिन भर पूजा पाठ करते हैं आज इसी पेड़ को कल केले को पूजा करता हूँ कल पीपल पेड़ को पूजा करता हूँ कल इसी देवी को पूजा उसी देवता को सारे देवता हूँ पूजा करता रहता हूँ कहते पूजा पाठ क्या भगवान मिल जाएंगे कहते नहीं निर्वाह बना कहते हम घर बार छोड़ कर छोड़ दिया है हाँ हम सब घर बार छोड़ छाड़ दिया है क्या उससे मूल बढ़ा दिया कहते उससे भगवान मिल जाएंगे कहते नहीं कहते फिर नहीं वह छंद था सर वेद हमने पढ़ लिया सर वेद उपनिषद हमने पढ़ लिया क्या उससे क्या भगवान मिलेंगे कहते नहीं बस आपको सारे नहीं 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 सारे को नहीं बोल दिया तब है क्या बोलो भी उपाय है हाँ केवल एक उपाय है कहते बिना महत पजो पदो रजो भिषे कम जब तो कोई महत संतों का कोई महान सत्पुरुष का जब तक उनके चरण में हम अभिषिक्त नहीं होते हैं उनके चरण में जब तक स्वयं को स्वयं बीत नहीं देते हैं जब तक उनका अनुगत्य नहीं ग्रहण करते हैं तब तक कहते हैं तब तक कुछ भी नहीं होने वाले फिर कुछ सारा दुनिया करने वाले कुछ नहीं होगा हाँ इसलिए ये एक श्लोक विचार में लिया फिर दूसरा श्लोक बताए जिस समय प्रह्लाद को उसको पिता प्रश्न करना है प्रह्लाद ये बता तेरे को मैं जो जो प्रश्न करता हूँ हर प्रश्न का उत्तर यही बोलते हो तुम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मजनम जितने हर प्रश्न करते हो हरि 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 सारे हरि का पूजा हरि का पाठ हरि का कीर्तन वनम गरिमा से सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो जाकर के हरि भजन करते हरि 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 करते हो तेरे बुद्धि को बिगाड़ किसी ने कि बुद्धि किसी ने बिगाड़ दिया क्या जिस दुर्गोपास में हमने भेजा था ये संध्या वर्गोपास में क्या संध्या वगैरह तेरे दुख भ्रष्ट कर दिया प्रह्लाद महाराज कहते हैं एकम नैसा नदी स्थावत रुद्रमाग्री स्थानर्थ अवगम जदर्थ महीसा निश्चिना नाम न प्रीत यावत तब तक ये मति भगवान नहीं कर सकती है कहते तब तक है जब तक कोई व्यक्ति ऐसे निष्किंचन किसी संतो महापुरुष चरण में जब तक कोई समर्पित नहीं होता है उनका चरण धूल को तरह अभिषिक्त नहीं हो जाता है कहते नैसा मति स्थावर गुरु प्रमाण भी तब तक ये मति भगवान में लग नहीं सकती है इसलिए जितने सारे शास्त्र हम पढ़ेंगे जितने सारे शास्त्र का केवल एक निचोड़ है साधु संग सर्व शास्त्र का सारे शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं विनु सत्संग विवेक ना हो राम कृपा बिना सुलभ ना सुलभ इसलिए ऐसे जो भक्त है तो कृष्ण स्वयं एकादश स्कंद में कहते हैं कहते हैं निर्भयम मुनि शांतम सुहृदम सर्वदिना अनुभ्रजामि अहम नित्यम पुयेत अंधिनम कहते हैं ऐसे जो मेरे परम भक्त है जो निर्भय है वही है जो शांत है, जो सभी हृदय भगवान को दर्शन करने वाले, जो समदर्शी ऐसे जो भक्त है, ऐसे भक्त के लिए मैं क्या करता हूँ? कहते अनु प्रजापि अहम नित्य, ऐसे भक्तों के चरणों को धूल पकाने के लिए कहते अनु प्रजापि, कहते उसको पीछे पीछे चल देते क्यों पूरे मतलब पवित्र होने के लिए, कहते क्या अकेले पवित्र होने के लिए? कहते नहीं, अकेले तो पवित्र होऊंगा हूं, क्या सारा विश्व ब्रह्मांड को पवित्र बनने के लिए? क्यों? कहते भक्तों जब चलते हैं उनको पीछे पीछे चलो तो उनके चरण धूल उड़ता है, कहते भक्तों का चरण धूल सिर पर पड़े। देखो आनंद बड़े विश्व ब्रह्मांड का जो व्यवहार है वो कहते हैं भक्तों को पीछे पीछे चलता हूँ, कहते क्यों? कहते उनका चरण धूल पाने के लिए, कहते किसी लिए? कहते मैं ऋणी हो गया, कहते भक्तों के पास ऋणी हो, कहते आप ऋणी हो गए, किसके पास? कहते भक्तों के पास में, इसलिए वो ऋणी से ऋणी होने के लिए, मैं पवित्र बनने के लिए, मैं पवित्र नहीं, मेरे अंदर में जो अनंत विश्व ब्रह्मांड बैठा है, एक भक्त का चरण धूल में इतने शक्ति है, इतने शक्ति संतों का चरण धूल में, अकेले में पवित्र बनने के लिए नहीं, मेरे अंदर में जो अनंत विश्व ब्रह्मांड बैठा हुआ सारा विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर देता हूँ, एक भक्त का चरण धूल अगर मैं सिर पर, ऐसे भक्त का चरण धूल अगर पड़े तो समझो भक्तों का चरण धूल में कितने शक्ति है। कहते आप क्या भक्तों के पास में ऋण बने? बहुत ऋण बन गया। क्या देखो अगर इससे आपके बल लेते रहो, कोई व्यक्ति आपको देखते कहते लेते रहो, आप क्या बनोगे? ऋण बन जाओगे ना, लेते 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 हम अपने बन जाते हैं। कहते भक्त केवल भक्त लोगों को केवल भक्तों से भी लेते रहता हूँ, इतने भक्त मेरा सेवा करते हैं। हमारे पिताश्रम कहते हैं, कहते गनाथ प्रेष्टम न पारमेष्टम न सार्वभम न साधि सत्यम। अगर भगवान को जितना चाहते हैं, कहते ननाथ प्रेष्टम मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, न जो पार प्रेष्टम कहते ब्रह्म पद को ले लो, कहते नहीं मुझे ब्रह्म पद क्यों नहीं चाहिए, कहते न जो परमेश पदम न सार्वभम, कहते पृथ्वी का राजत्व ले लो, कहते नहीं, कहते रसाधि पत्यम उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य पूर्ण पाताल लोक को ले लो, कहते नहीं। इसलिए भक्तों का प्रहलाद मेरे भगवान कहते प्रहलाद कुछ ले ले बेटा, कहते प्रभु थोड़ी नहीं बढ़िया हूँ, इसलिए आपको भजन किया हूँ लेने के लिए। जब कृष्ण ब्रज गोपियों को कहते हैं, कहते गोपियां तुम लोग मेरे बड़ी सेवा की हो, न पाए हम निर्वस्त सज जाऊ, जहां पर भगवान कहते हैं ब्रज गोपियां तुम लोगों का ऋण कभी हम चुका नहीं पाऊंगा, इतने तुम लोग मेरे सेवा किए हो हम ऋण चुका नहीं पाएंगे, तो ले लो। तो गोपियां क्या बोलती है? कहते प्रभु अगर देना चाहते तो एक चीज दीजिए, क्या है? आपका सेवा करते हो। देखो इतने सेवा कितना जिन पर सेवा करते करते जब ऋण बन गया, जब ऋण से ऋण बनने के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ, फिर भक्त मानते हैं आपकी सेवा दो, तो सेवा करते करते जब भक्त सेवा करते हैं तो ऋण बन गया ना, इसलिए भगवान कहते हो ऋण से ऋण बनने के लिए मैं भक्तों का पीछे पीछे चरण धूल पाने के लिए चलता हूँ। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, चूंकि भगवान क्यों भक्तों का चरण में चाह रहे, कारण क्या है? इसलिए हमारे नर्मन दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भूत से एती साधनिर्मल। अगर कोई भगवत प्रेम को पाना चाहता है उसको तीन वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। कहते क्या है? कहते भक्त पद धूलि, भक्तों का चरण धूले। दूसरा नंबर है भक्त पद जल, भक्तों का चरणामृत है। और तीसरा है भक्तों का अर्धामृत, भक्त का कथामृत है। अगर ये तीन चीज को कोई सेवन करते हैं तब ये माया को दूर करने में और भगवत प्राप्त का इतने श्रेष्ठ उपाय है, इससे बड़ा रास्ता जगत में कुछ भी नहीं। और इतने जोर जबरदस्ती की है, इतने जोर जबरदस्त ताकत है ये तीन वस्तु में, इसलिए ये तीन वस्तु को द्वारा भगवत प्राप्त होती है और भगवत प्रेम मिलता है। अभी कृष्ण कहते हैं भगवान क्या चाहते हैं? भगवान के भक्तों को पीछे पीछे चरण धूल पाने के लिए चाहते हैं। कहते कारण है विश्वनाथ पीठ कहते हैं ये जब तक भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक इसको भक्ति नहीं मिलता है। इसलिए कृष्ण कौन है? कहते कृष्ण विषय विग्रह है, वो आश्रय विग्रह नहीं, विषय विग्रह भगवान है। इसलिए जो विषय विग्रह भगवान होने का नाते भगवान में जो रस है
उनमें जो माधुर्य है, उनको जो गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, जो प्रेम माधुर्य, रस माधुर्य कृष्ण को पता नहीं। इसलिए कृष्ण द्वापर युग में जब लीला समाप्त के बाद में जब वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, तब श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन में निकुंज में बैठी बैठी करके सोच रहे हैं, हर चीज को मैंने आस्वादन की है, लेकिन एक चीज तो मैं समझ नहीं पाया, मैं दिमाग से ऊपर चला गया। कहते वो क्या है? कहते राधया प्रणय महिमा की कृतम। कहते राधारायण की प्रेम महिमा क्या है? और मेरे जो अद्भुत रूप माधुर्य है, जिस रूप माधुर्य राधारायणी संपूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं, मेरे अंदर में क्या रहस्य है? राधारायण का प्रेम जो तीन चीज जो कृष्ण नहीं समझ पाए, कृष्ण स्वयं किसे बिक रहे हैं, लेकिन कृष्ण में जो रहस्य है कृष्ण स्वयं नहीं समझ पाए, यह चीज को पूर्णतम रूप में श्री ईश्वरी राधारायण ही आस्वादन करती, जिसके लिए स्वयं कृष्ण चंद्र को राधा भाव दुष्फलितम नवमि कृष्ण स्वरूपम। स्वयं कृष्ण चंद्र कलयुग में राधारायण के अंगकार के भाव को लेकर के वो जगत में अवतरण होते हैं, और स्वयं कृष्ण हो बोलेगे कृष्ण 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 कैसो कृष्ण कैसो पहना बोलेगे, स्वयं कृष्ण नाम रखते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे अंदर का जो माधुर्य है मुझे पता नहीं, कि पता भक्तों को कहते भक्ति कैसे मिल सकती है? अनाराध्य राधा बलम भोजरेणु अनाश्रित वृंदावन तद अटपी असंभाष तद भाव गंभीर चिता भूत श्याम सिंधु रस श्यावगाम। अगर कोई श्याम सिंधु रूपी समुद्र में कृष्ण का रस समुद्र में कोई अगर गोता लगाना चाहते हैं तो उनको तीन चीज की जरूरत है। क्या क्या है? कहते अनाराध्य राधा पदा भजन, जब तक श्री ईश्वर जी की चरण को आप आराधना नहीं करते हो। दूसरा है राधारायण चरण अंकित जो वृंदावन धाम को जब तक कोई आश्रय नहीं करते। अब सबसे बड़ा क्या है? कहते श्री राधारायण का भाव में जो डूबे हुए एक जो संत है, जब तक उनको चरण में जब तक कोई शरणागत नहीं होती, कृष्ण रस भाविता मती ऐसे जब जब आश्रित नहीं करते हैं, कुतः श्याम सुंदर से श्याम लगा हो, कहां उसको श्याम सिंधु कृष्ण रस समुद्र के कहां पता लगा सकता है? इसलिए यहां पर बता रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तीन चीज की जरूरत है। इसलिए कृष्ण चाहते हैं अगर भक्तों को पीछे खींच जाओ, सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री ईश्वर की राधारायण। अगर हम लोग पीछे खींच चलो, अगर राधारायण का चरण द्वारा पूछ करके मेरे स्त्री को पड़े तो क्या होता? अभी मेरे अंदर में जो माधुर्य है वो माधुर्य में स्वयं आस्वादन कर पाऊंगा। इसलिए भक्तों का चरण भी भक्त संघ की इतनी दुर्लभता है। इसलिए आज आप लोग समझो परम सौभाग्य, आप लोग परम सौभाग्य हो आज ऐसे हमारे महाराज जी सर्वत्र विचरण करके कृष्ण भक्ति को प्रचार करने वाले और ब्रज रस रसिक है। हाँ, कृष्ण रस भक्ति में जो डूबे हुए एक संतों का जो चरण जो बैठे हो, समझो इनका दर्शन मात्र से तथा तो दर पवित्र हो गई। विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर कहते हैं तो दर्शन पवित्र कर गई तुम्हारे गुण, केवल संतों का दर्शन मात्र से गंगा में स्नान करने पर पवित्र हो गई, लेकिन केवल संतों को दर्शन से पवित्र हो जाता है, पुरुष अपनों से पवित्र हो जाता है। अपने आप का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह की संतों के चरण का अगर हम बैठ गए तो समझे जीवन धन्य धन्य हो गया। इसलिए इसी दृष्टि से हम लोग परम सौभाग्य महाराज के चरण में हम इन लोगों के चरण भक्त
कृष्णदास खड़े होकर के थोड़ा सा कीर्तन करा दे।
सचिन गौर हरी की माता मुक्ति हरी जीव की जय जय श्री राम। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा हरि। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, मैं कुछ बोलूंगा। आप लोग सभी लोग बैठ जाइए, यहाँ पर अभी कोई ना है, स्टेज पर कोई ना है, नीचे बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ। हाँ,
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं अभी आप लोगों ने श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज और अंत में श्रीमान श्री रसानंद ब्रह्मचारी के मुख से बहुत सुंदर ब्रज की भक्ति के संबंध में कथा सुनी। इन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद से जो हरि कथा पूछा और उन्होंने जो बतलाया उसका सार अंतिम तक इन्होंने वर्णन किया। माधव महाराज जी ने उसको कैसे पाया जा सकता है तन्नाम रूप चरितादि इत्यादि के द्वारा उदाहरण के साथ में प्रस्तुत किया है। और श्री रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया बिना महत्पाद रजोग से कम ब्रज रस रसिक तब तक वह वैष्णवों की कृपा जब तक नहीं होगा उनकी चरणों से अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक ऐसी प्रेममयी भक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं प्रसंग पुस्तक पहले कह रहा हूं आजकल सर्वत्र नव जागरण हो रहा है नव देवी की पूजा हो रहा है ये पहले नहीं था 400-500 वर्ष पहले देवी की पूजा इस रूप में नहीं होती थी जो आजकल हो रही है। देवी का जन्म है न क्या है रामचंद्र जी ने विजय के लिए रावण के विजय के लिए यात्रा की थी दशमी के दिन में और राम की गाथा उसमें है ये देवी जी का कहां से आ गया उनका जन्म है ना क्या तिथि है। हां ये देवी के संबंध में इन्होंने बतलाया ये दुर्गा जी हैं जगत रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली हैं जो जीव भगवान से भूल जाते हैं उनको दंड देने वाली है उनको सुधार करती है और उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब इच्छाओं को पूर्ण करती है किंतु से सुख नहीं जोग माया का आश्रय करना पड़ेगा जो कृष्ण से मिलाती है कृष्ण की कृपा वो प्रदान करती है। असल में ये रामचंद्र जी का ही विजय की गाथा है किंतु बंगाल से हवा हुई और सारे भारतवर्ष का सारे विश्व में आजकल दुर्गा जी की पूजा होती है। ठीक है जिन लोगों को धर्म रुपया पैसा धन संपत्ति बेटा बेटी जरूरत है वो करें किंतु ये माया है ये समझो। इसलिए हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समस्त शास्त्रों का निचोड़ लिखा है एक श्लोक अमनाय प्राह तत्तम हरिमी अपरमम अमनाय प्राह भगवान की वाणी वेद ये परमार्थिक विषय में प्रमाण है। जो लोग वेद और वेद का भी सार श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, इसके विपरीत आचरण करते हैं, वे संत नहीं है। आजकल खूब हरी कथा दिल्ली में भी खूब हो रही है, जो लोग ये कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म से एक मिल करके एक हो जाएंगे, इनकी बात नहीं सुनना। भागवत में, गीता में ये सब नहीं कहा गया। सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ माम एकम शरणम व्रज, माम एव जी प्रपद्यन्ते ताम एतम परम, माम एकम माम एकम माम एकम। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, सब धर्मों को छोड़ करके हमारे शरणागत हो, इसलिए ब्रह्म हो जाएंगे। या भागवत का विचार नहीं है, गीता का विचार नहीं है, यह एक तरह से अभिशाप है। जो ऐसी बातें कहते हैं उनकी बात, उनकी कथा मत सुनो। कुछ लोग ये कहते हैं कि लौकिक कर्मों को करो। अभी दिल्ली के चौराहों पर उनके सेवक लोग, उनके शिष्य लोग खड़े होकर के पथ निर्देश कर, ये साधुता का काम नहीं है। कृष्ण को हम भूल गए हैं, और भूलने से हमारी ये दुर्दशा है। कैसे फिर उनको हमें स्मरण करके, इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है, उनका संबंध है, हम जान सके। इसमें वेद और वेद के अनुगत जो शास्त्र हैं, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, भागवत है, और भागवत सबसे मुख्य प्रमाण है। वो क्या कहते हैं, इन नौ विषयों को बतलाते हैं, इसको दस मूल कहा जाता है। वैद्य शास्त्र में, चिकित्सा विज्ञान में, दस मूल को का सेवन करने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसका सेवन करने से भव रोग, जो सबसे कठिन रोग है, ये दूर हो जाए। भव रोग माने क्या, भव माने होना, जन्म पुनः जन्म पुनः जन्म, इस तरह से करोड़ों जन्मों से, अनादि काल से हमारा जन्म होता रहा है, सुख खोजते रहे हैं। और यदि मनुष्य जीवन में तत्वज्ञ रसिक ब्रजवास ब्रज के भक्ति को जो जानते हैं, उनका अनुगत्य न किया जाए, तो ये भक्ति नहीं मिल सकती, उनका जीवन वृथा हो जाए। इसलिए अमनाय प्राह, क्या कहते हैं ये शास्त्र समूह, अमनाय प्राह तत्त्वम हरिमिह, हरि ही परम तत्व है। ये हरि कौन है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ही नाना प्रकार के अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, राम, नृसिंह और कृष्ण स्वयं भगवान है। अखिल रसाम सिंधु हैं, रस चीनी और पानी मिलाकर के, नींबू देकर के, ये नहीं रस होता है। साधारण तरह से बारह रस माने गए, जिसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, और गौण में हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये गौण साल बारह प्रकार के रस। अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण ही अखिल रसों के अवधि है, सर्वशक्तिमान है। एक सेकंड के अंदर में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड का ध्वंस कर, और एक सेकंड में ही करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान। उनसे दो प्रकार के जीव प्रकाशित होते हैं, उनके विभिन्न अंश हैं, भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं है, उनकी शक्ति के परिणाम है। इसलिए शक्ति परिणाम हम लोगों में ग्रहण करते हैं। वो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और एक बद्ध, अनादि काल से बद्ध है। हम लोग अनादि काल से बद्ध जीव हैं। मुक्त जीव वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य सेवा करते हैं। जो ज्योति हैं वहां बलदेव प्रभु से प्रकटित होते हैं, किंतु कृष्ण की नित्य सेवा करके उनके परिकर कहलाते हैं, अब जीव उनको नहीं करते। और हम लोग बद्ध जीव हैं, बस से हमारी स्थितियां हैं, कोई स्थावर है, चल फिर नहीं सकते, पहाड़ वृक्ष इत्यादि चल नहीं सकते, इनसे भी कुछ ऊपर है, पशु पक्षी कुछ बोल सकते हैं, जानवर कुछ बोल सकते हैं, चल सकते हैं, इनसे भी श्रेष्ठ बंदर इत्यादि हैं, उनसे भी श्रेष्ठ मनुष्य। भगवान ने अनुग्रह करके मनुष्य शरीर दिया है, इसके अंदर में आत्मा है, मैं हूं। यह हार्ड मांस रक्त पेशाब पैखाने की थैली है, एक दिन पुराना होगा, एक दिन मरेंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा जो कुछ कमाई कर रहे हो। अर्थ जिसके लिए हाय हाय करते हैं दिन रात, नित्यार्थ देन भित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना गृहापत्त आप्त पशु भी कासादित चले। जो अर्थ नहीं रहने से भी चिंता, हो जाने पर भी कहां रखूं, चोर डकैत को पता न लग जाएगा और गोली मार करके ले लेंगे, और यदि चला गया तो भी हाय है। और उसे जो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, पत्नी पुत्र परिवार पशु इत्यादि, इनसे क्या सुख हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को दिया, इसी में भगवान की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए जन्म को खो मत, इसी जन्म में ही भगवान की कुछ अनुभूति हो जाए, जो फिर मनुष्य जन्म न हो करके भगवान की सेवा, जो भी प्रेम बतला रहे थे वो उसकी प्राप्ति हो जाए। तो ये दो प्रकार के जीव हैं। और अखिल चेतन और जड़ जगत का भगवान से भेद और अभेद संबंध है। भगवान की शक्ति से प्रकटित जीव है, और उन्हीं से प्रकटित ये सारा जगत है, हम लोगों का जड़ शरीर है। इसलिए कुछ सेंस में शक्ति से, भगवान की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। बतला तो दिया, किंतु इसको समझने के लिए कुछ साधु संग करना पड़ेगा। इस संसार में भगवान को प्राप्ति करने के लिए केवल मात्र भक्ति ही एकमात्र साधन। वो भक्ति क्या है? अपने तन से, मन, वचन, शरीर और मन से अति भावना, इनकी सारी चेष्टाएं शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में तलधारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, कृष्ण सुखी हो, इसके लिए कर, ये भक्ति हुई। किंतु उत्तम भक्ति क्या होगी? कोई भी संसारी कामना वासना न हो, कृष्ण की भक्ति बढ़े, इसके अतिरिक्त में और कोई संसारी कामना मत करो, नहीं तो भक्ति ध्रुव की भांति सकाम हो जाएगी, वो भक्ति नहीं रहेगी। तो और दूसरा कर्म, योग, ज्ञान, तपस्या इत्यादि, इसके द्वारा भक्ति आच्छादित न हो। जब तक जीवित हैं कर्म करना पड़ेगा, किंतु कर्म ऐसा मत करो जिससे भक्ति ढक जाए।
जैसे माता पिता की सेवा नहीं करने से भक्ति नहीं होगी, कर्म करो। कर्म सब समय अशुद्ध है। यदि भगवान को अर्पित नहीं है जो कर्म, वो सब समय बंधन करने वाला है। पुण्य काम करोगे, माता पिता की सेवा और सब चीजें, लोक समाज की सेवा, तो उसे सोने की बेड़ी मिलेगी। सोने की बेड़ी में बंधोगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, फिर वहां से सिर नीचे किए हुए फिर नीचे आना पड़ेगा। ते तंग भक्ता स्वर्गलोकम विशाल क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी पन्ना गतागतम। वो फिर आना जाना बना रहा, इससे कुछ लाभ नहीं। देवी इत्यादि का पूजा करने से यही होगा, अधिक कुछ नहीं मिल सकेगा जो आपको दुखी देगा। तो जड़ से और साधन केवल मात्र भक्ति है, तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और प्रेम ही प्रयोजन है। यदि प्रेम नहीं है, कृष्ण मिल जाए तो कंस जरासंध रावण इत्यादि की भांति भगवान से लड़ेंगे, भगवान को कष्ट देंगे। और प्रेम रहेगा तो उस प्रेम के द्वारा कृष्ण को वशीभूत किया जाए। इसलिए समस्त शास्त्रों का प्रयोजन कृष्ण प्रेम है, न कि कृष्ण। इसी चीज को साधन करना होगा। उसमें कहते हैं एक श्लोक में, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजुबधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेम कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतपितम तत्रादु। एक ही श्लोक में बतलाया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय आ गया। तो कृष्ण हमारे आराध्य हैं, किंतु कौन कृष्ण? मथुरा में जो जन्म लिए और फिर कंस को मारा, द्वारका चले गए, वो कृष्ण नहीं। नंद नंदन जसोदा नंदन राधाकांत ब्रज में रहने वाले कृष्ण, वृंदावन को छोड़कर के वो कहीं नहीं जाते। वहां पर तो एक आंशिक रूप में उनका जन्म हुआ मथुरा में, और पूर्ण रूप से गोकुल में जसोदा जी के घर से। इन्होंने ही राश इत्यादि किया, नृसिंह राश नहीं कर सकते, रामचंद्र भी राश नहीं कर सकते, केवल राम कृष्ण ही कर सकते हैं। राम से कोई वरदान मांगे, जनकपुर की स्त्रियां, ये हम भी आपसे शादी विवाह करना चाहती हैं आपके साथ में, कहीं नहीं कृष्ण लीला में तुम लोग गोपी होकर के आना, राम की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदरी हमारे आराध्य। इस डिफरेंस को समझना, इस पार्थक्य को, जो मथुरेश कृष्ण है, द्वारकेश कृष्ण है, वो ब्रजेंद्र नंदन नहीं है। है तो एक ही किंतु भाव है। मथुरा के कृष्ण को यह भावना रहती है कि मैं जदवंशी हूं, मैं देवकी और वसुदेव का पुत्र हूं, हाथ में मुरली नहीं, सिर पर मोर मुकुट नहीं है। ये सब कृष्ण वहां रख नहीं सकते। कोई पूछा यह किसके पुत्र हो, देवकी नंदन वसुदेव नंदन। और वही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं, भाव होता है मैं नंदनंदन हूं, जशोदा नंदन हूं, गोपीकांत हूं, राधा कांत हूं, ये भाव होता है। तो ऐसा भाव कृष्ण के प्रति रहेगा। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, यही हमारे आराध्य हैं। ठीक जैसे कृष्ण आराध्य हैं, वैसे वृंदावन भी हमारा आराध्य है। वृंदावन के बिना ये सब लीलाएं कहीं नहीं हो सकती।
केवल वृंदावन में ही हूं। यह वृंदावन है क्या? कृष्ण से अभिन्न बलदेव प्रभु का ये प्रकाश है। बलदेव प्रभु ही ब्रज के रूप में, कृष्ण की बंसी के रूप में, उनके जितने भी भाव हैं उस सब के रूप में कृष्ण ही है, बलदेव प्रभु ही है। इसलिए धाम भी ब्रज है, इसलिए वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं लीलाएं नहीं। जैसे कृष्ण आराध्य है, ये ब्रज भी आराध्य है। और सबसे उपासना सबसे किसकी श्रेष्ठ है उसके लिए बतलाते हैं, अरध्यो भगवान ब्रजे शतयस तद्दाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना पजपद वर्गेन जा कल्पिता। गोपियों ने उन्नत उज्ज्वल रस से, पारकीय भाव से जो कृष्ण की आराधना की थी, वही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तत्त्वतः गोपियां राधा जी के प्रकाश हैं, काय व्यूह हैं, और राधा जी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, कोई भी भेद नहीं। तब विलास के लिए दो रूपों में वो लोग प्रकट हैं। इसलिए गोपियों की आराधना परकीय भाव से है, ये महाप्रभु की देन है। भागवत में लिखा है पति सुतान्वय रात्रिपन भवान अति विलंघते अंत अच्युता। गोपियां बंसी का स्वर सुनते ही कृष्ण हम ही को बुला रहे हैं, सभी गोपियां दौड़ी और किसी को साथ नहीं ली। जो श्रृंगार कर रही थी एक आंख में अंजन उसी को देकर के चली, जो पतियों को परिवेशन कर रही थी उसी समय में छोड़ दिया, जो दलिया पका रही थी उसी को चूल्हे पर छोड़ दिया, जो श्रृंगार कर रही थी उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके ही चल पड़ी, सभी कृष्ण के पास में। मन कृष्ण ने उनका चित्त चुरा लिया है, वो चोर के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पति सुतान्वय, पति को छोड़ दिया। इसे श्रीमद् भागवत के राष्ट्रपंच अध्याय के प्रत्येक श्लोकों में ही गोपियां कृष्ण से विवाहित नहीं थी, राधा जी कृष्ण से विवाहित नहीं थी, उनकी पराशक्ति होने पर भी जो माया ने ऐसा किया कि राधा जी का अभिमन्यु इत्यादि से करा दिया, सब गोपियों की शादी। कब कब शादी कब हुई? ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया और उनके सखाओं को चुरा दिया, चुरा लिया। उस समय कृष्ण स्वयं बछड़े भी बन गए कोटि कोटि, और कोटि कोटि सखा बन गए। और द्वारकाचार्य ने कहा जी ये वर्ष या महीना बड़ा सुंदर है, अपनी अपनी लड़कियों की जो गर्भ में भी हो उनकी भी शादी इसी समय में कर दो। तो वो शादी किससे हुई? कृष्ण से हुई, क्योंकि कृष्ण ही बने हुए हैं, इसलिए शादी भी कृष्ण ही के साथ में। किंतु जोग माया ने किसी को समझने नहीं दिया। तो इस तरह से अरद्धो भगवान ब्रजेश तनयंत दाम वृंदावन रम्य काचित उपासना पजपद पर गई न कल्पिता। गोपियों की आराधना कृष्ण की जो है वो सर्वोत्तम है, कृष्ण इसका ऋण नहीं चुका सकते, अभी इन लोगों ने बतलाया। और श्रीमद् भागवत ही अबल प्रमाण है, यही चैतन्य महाप्रभु का एक शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ कहा। अब कहते हैं ये होगा कैसे ये? अब चलो उपदेशामृत के पहले श्लोक से, पाचो बेगम, पाचो बेगम, पाचो मैंने जीवा का बेग, भाई जीवा को कंट्रोल में रखो, इसमें हड्डी नहीं है, लूली जीवा है, किंतु अनर्थ करती है, इसलिए महाभारत और रामायण हो गया। द्रौपदी ने कह दिया अंधा का पुत्र अंधा होता है, इसी के लिए महाभारत हो गया। और सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा ये मारीची जब मरने के लिए मारा राम ने बाण, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण पुकारा। सीता जी ने कहा तुम जल्दी से जाओ, राम की सहायता करो, शायद कोई असुर उन पर टूट पड़ा है। उन्होंने कहा जे हमारे भाई के ऊपर में कुछ नहीं हो सकता है, मैं जानता हूं। क्या तो हमें अपनी स्त्री बनाना चाहता है? लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, जिसको मैं मां जानता हूं, कभी मुख नहीं दर्शन किया और हमें ऐसी कह रही है। तो एक बस लकीर खींच करके इसके आगे मत जाना और चले गए। उसी के लिए क्या हुआ, रावण आया छल बल से चुरा ले गया और पूरा रामायण किसी के लिए हो गया। इसलिए जीवा पर कंट्रोल रखो, जैसी तैसी बातें मत करो। और
फिर अभी रह जाएगा।
अच्छा कृष्णदास एक कीर्तन, आप एक कीर्तन कर दीजिए, आप 5 मिनटों में शेष कर आपकी। अब आप समाप्त होने ही वाले।
देखिए हमारे गुरु महाराज जी के शिष्यों ने एक बहुत सुंदर स्लाइड शो तैयार किया है। ये पहला प्रयास है हमारे गोगोचंद जी, हमारे मैनेजर साहब का नाम है अनिरुद्ध प्रभु, और इसे कौन है राजलेखा दीदी, और लोगों का ये पहला सीरियल स्लाइड शो का पहला सीरियल आप लोगों को दिखाया जाने जा रहा है। और सबसे पहले थोड़ी देर के लिए एक कीर्तन और महाराज जी जो कहना चाहते थे उसे आप समझ लीजिए। ज्यादा देर नहीं बोलते थे इसलिए उनको रोक दिया गया था।
हाँ हमारा 5 मिनट और था।
Yeah.
कला हो जाएगा, लाइफ बस की हो सकता है कि नौबत आ जाए। दूसरी बात, मन का वेग, मन बहुत दौड़ता है, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। मन को भगवान की लीला कथाओं में, उनके नाम में उनको लगाओ। जीवा वेग, जीवा का वेग, उदर वेग, अधिक खाना, पाचन शक्ति भी गड़बड़ हो जाती है और नाना प्रकार की इच्छा जगती है, इसलिए और दो प्रकार के वेग आ जाते हैं। इसलिए सब वेगों को जहां तक हो सके भगवान को प्राप्त करना है, इसको कंट्रोल करो। अत्याहार प्रयास, इसको समझो, किसी विषय में अति आहार, अति खाना पीना भी नहीं। अत्याहार प्रयास भगवत भक्ति के अतिरिक्त दूसरे विषयों पर, जैसे कुछ लोग आजकल योग की तरफ में बड़े चल रहे हैं, कौन रामाश्रय या कौन एक संत हैं,
रामदेव जी।
जहां देखो योग चल रहा है। योग माने क्या समझो, शरीर की कसरत को, व्यायाम को योग नहीं कहते। दो वस्तुओं का योग, एक और एक मिलकर के दो होता है, इसको जो कहते हैं। एक कृष्ण है और एक जीव है, दोनों में जो मिलन कराए उसको जो कहते हैं। ये योग चाहे तुम कसरत करो, व्यायाम करो, चाहे जीवन भर करो, शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, आज कल न परसों ये मरेगा ही। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी जरूरत है करो, किंतु यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो जाए तो वो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उससे बल्कि उल्टे चले जाएंगे। इसलिए ये सब नहीं है। तहत्याहार प्रयास प्रजल्प, भगवान की कथाओं के अतिरिक्त और दूसरी बातें मत बोलो। महाप्रभु तो कहते थे हरे कृष्ण खड़ा लाओ, और ठाकुर जी के लिए जल ले आओ। कोई दूसरा कहता है तो बस हरे कृष्ण से ही सभी बातें उनकी होती। जहां तक हो सके भगवान की कथाओं और चर्चाओं में ही इसको लगाना चाहिए। प्रयास प्रजल्पन नियमाग्र, भगवान की कथाओं को नियम पूर्वक जो कहा गया है उसका पालन करो, किंतु कभी कभी अत्यंत आग्रह उसमें ना हो। गुरु जी आए और उनको प्रणाम नहीं किया और अपनी कथा दे बोलते रह गए, ये सब ऐसी चीजें न हो। उत्साह, यदि भगवान की अनुभूति होने में विलंब होता है तब उत्साह रखो। उत्साह निश्चय
निश्चय कृष्ण मिलेंगे। निश्चय धैर्य, धैर्य धारण करो, तत्त कर्म प्रवर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो भक्ति के अंग है उसको करते जाओ। संग त्याग, जगत के जो विषयी लोग हैं उनसे जरा दूर संपर्क से करो। इस प्रकार से ये छह भक्ति के अंग हैं, इसे भक्ति सिद्ध का भक्ति सिद्ध होती है। पैसों की निंदा मत करो, खबरदार वो कुछ क्रोधी हैं, कुछ काले हैं, तुतलाते हैं, इसलिए मत करो। खबरदार उनकी, दूसरों की निंदा मत करो, विशेष करके वैष्णवों की निंदा मत करो। और रुचि नहीं रहने पर भी हरि नाम करो, हरि कथा सुनो, इस तरह से आगे बढ़ो। और अंत में तन्नाम रूप चरितादि, अभी हमारे माधव महाराज जी ने इसकी व्याख्या की, ब्रज में रह करके कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हुए और मुख से उनकी उनके नाम को स्मरण करते हुए ब्रज के अनुरागी रसी तत्वविद वैष्णव है उनके अनुगत्य में भजन करो। यही सबसे साधनों का सार है और शिक्षाओं का सार। यही कह करके अपना वक्तव्य में समाप्त करता हूँ। और एक बात, अभी शीघ्र ही ये पूर्णिमा से हमारी व्रत यात्रा 84 करोड़ पंजे मंडल की यात्रा आरंभ होगी। दिल्ली वाले जाते हैं दो एक दिन रह करके चले जाते हैं, वो एक महीना नहीं रह सकते। देखो विश्व के सब कोने कोने से, कहां से, अमेरिका से, ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, कहां कहां से लोग आएंगे, एक महीना रहेंगे। हमारे बंगाल से भी आएंगे और बंबई के साइड से आएंगे,
जम्मू
जम्मू से आएंगे, वो लोग रहेंगे एक महीना,
बंगलोर, त्रिविक्रम,
दिल्ली में आएंगे कदापि नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, मैं नहीं जानता। क्या करते हैं, धन उपार्जन, धन उपार्जन तो भाई किसी समय नहीं कर सकते। एक महीने की जो हरि कथा होगी, अद्भुत कथा होगी, और कृष्ण की लीलाओं की स्थलियों पर जाने से, उसके चरण की धूलि लेने से ब्रज में धूल है, ऐसी कोई धूलि नहीं है जहां पर राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं। तो यही आप लोगों से निवेदन है, यदि हो सके दिल्ली वाले भी तो वहां पर पधारिए और एक महीना हमारे साथ में ब्रजमंडल के, नहीं हो तो 15 दिन, नहीं हो तो 7 दिन भी जाएंगे।